हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इनायत सीढ़ियों तक पहुँचती उससे पहले ही वो किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। वो घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर करके देखती हैं, तो उसके सामने इस समय रियाज खड़ा था। रियाज को देखकर उसके चेहरे पर जो भी हताशा थी वो एक राहत में बदल गई। इनायत के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उसकी मुस्कान देखकर रियाज उसे देखने लगता है। इनायत जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके गले लग जाती है। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ भी ठीक से रियाज को गले नहीं लग पा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में लपेटने की कोशिश कर रही थी। इनायत के ऐसा कहने पर रियाज हैरान हो जाता है। वो हैरानी से इनायत के सर को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम परेशान लग रही हो?
वो
उसने धीरे से बस ये दो शब्द मुंह से निकाले और अपने हाथ से पीछे की तरफ इशारा करने लगी। रियाज ने जब वहां देखा तो दो लड़के थे जो उल्टी दिशा में भाग रहे थे। उन्होंने रियाज को देखकर अपने कदम वापस ले लिए। रियाज की आंखें छोटी हो गईं। वो जल्दी से एक हाथ से इनायत को अपनी बाहों में संभालता है और दूसरे हाथ से उसने अपना फ़ोन निकालता है। उसने जल्दी से अपने फ़ोन में किसी को मैसेज किया और अगले ही पल वहां पर बॉडीगार्ड आ जाते हैं। इससे पहले कि वो लड़के भाग पाएं, बॉडीगार्ड जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका मुँह दबा लेते हैं ताकि उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर न आए। वो उन्हें कहां से और कौन से रास्ते से यूनिवर्सिटी से बाहर घसीट कर ले गए ये तो कोई नहीं बता सकता था, लेकिन उन दोनों का स्वागत अब रियाज के अड्डे पर ही होगा। रियाज इनायत को संभाल रहा था। जान, आराम से, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन इनायत उसे बुरी तरीके से अपनी बाहों में भरती है और रोने लगती है। वो बस एक पल के लिए ये सोचकर डर गई थी कि अगर रियाज सही वक्त पर नहीं आया होता तो क्या होता। उसने रोते हुए धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। उसका इतना कहना ही था कि रियाज ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और इनायत के हाथ उसके गर्दन पर लिपट गए। इनायत ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रखा था। रियाज इनायत को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और उसके साथ ही पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी नीचे आने लगे। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं, अहमद उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो तो यहाँ पर इनायत को लेने आया था, लेकिन रियाज अचानक से कब आ गया? जैसे ही रियाज की नज़र अहमद पर पड़ती है, उसकी नज़रें तीखी हो जाती है। पर इस वक्त इनायत को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो सीधे इनायत को लेकर गाड़ियों की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर उसकी प्राइवेट कार पहले से ही तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने रियाज को देखकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। रियाज ने इनायत को पिछली सीट पर आराम से बिठा दिया, खुद दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। पार्टीशन पहले ही ऑन था, इसीलिए ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा था तो उसे पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इनायत अभी भी डर रही थी। रियाज इनायत के हाथों को सहलाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनायत की घबराहट देखकर रियाज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। इस एहसास के साथ ही इनायत की आंखें बंद हो जाती है और वो घबराते हुए रियाज को देखकर कहती है, खुदा का शुक्र है कि आप सही समय पर पहुंच गए, वरना वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। रोते हुए उसकी हिचकियां तक निकल रही थी जब वो उनके इरादों के बारे में सोच रही थी। तो रियाज ने इनायत के आंसुओं को पूछा और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचाए। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम तक पहुँचने के लिए मेरे दुश्मनों को मेरी लाश से गुजरना होगा, ये वादा है मेरा। इनायत हैरानी से रियाज की आंखों में देख रही थी। वो इस हद तक इनायत पर अपना प्यार लुटा रहा है कि उसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं है। वो किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं देगा। लेकिन इस बात पर रियाज ये बताना भूल गया था कि वो खुद एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे चोट पहुंचा सकता है। रियाज उसके सर को अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे सहलाने लगा था और अब इनायत पहले से ज्यादा शांत थी, पर रियाज के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपना चेहरा झुकाकर इनायत को देखता है और पिछले दिनों के व्यवहार को देखने लगता है। इनायत का व्यवहार उसने नोट तो किया था, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में इनायत उसके साथ कोई खेल खेल रही है। जितनी वो मासूम है, क्या उसे खेल खेलना आता है? पर तभी इनायत खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि वो हवेली के रास्ते पर नहीं है, कहीं और जा रहे हैं। वो घबरा गई क्योंकि एक बार फिर से नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आ गए थे कि कहीं रियाज को जिब्रान के बारे में तो नहीं पता चल गया। वो घबराते हुए रियाज से अलग होती है और उसे देखकर घबराते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। ऐसे में तुम्हें मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? बस तुम आराम से बैठी रहो। रियाज ने इनायत की बात को बीच में काटा और उसे समझाते हुए कहने लगा, लेकिन इनायत के चेहरे पर डर और घबराहट अभी भी थी और ये होनी स्वाभाविक भी है। इंसान जब किसी चीज को अपने अंदर छुपाए रहता है और वो चीज उसका डर बनकर उसके चेहरे पर नजर आती है तो उसे सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि सामने वाले को उस राज का पता न चल जाए। और यही बात इस समय इनायत के साथ हो रही थी। वो जिब्रान के बारे में रियाज को पता नहीं लगने देना चाहती थी और इसी डर की वजह से रियाज की हर एक क्रिया पर उसे यही लगता था कि उसे जिब्रान के बारे में पता लग गया है। रियाज का फोन बजता है। वो अपना फोन निकालकर देखता है तो सामने से मुराद की कॉल थी। वो गुस्से में मुराद की कॉल उठाता है और कान पर लगाते हुए कहता है, बेवकूफ, जब तुम्हें कहा था कि इनायत को यूनिवर्सिटी लेने जाना तो तुम गए क्यों नहीं सही समय पर? रियाज इतनी तेज बोल रहा था कि इनायत कांप गई। सामने से मुराद ने कुछ कहा और रियाज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो रियाज की पूरी बात सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा और तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये कहने के बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब इनायत को मुराद के लिए घबराहट होने लगी। उसने धीरे से रियाज को देखते हुए कहा, आप उसे सजा मत दीजिएगा, उसने कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो, तभी वो मुझे लेने नहीं आ पाया है। और उन्होंने अहमद भाईजान को तो भेजा था ना।